प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, भाग नववा, लेक्चर नंबर 713. ॐ नमः सिद्धेय, ॐ नमः सिद्धेय, ॐ नमः सिद्धेय, ॐ सुधात्मने नमः. नमो अरिहन्तारम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वशायाणं, नमो लोये सौवशां सुर असुर नरपति वन्दने प्रविनष्ट घाति कर्मणे प्रणमन करो धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वरिशेष तीर्थंकर ने सौसिद्ध शुभास्तित्व ने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तपवीया चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदुवाई ओ मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौसिद्धने य नमस्करण करिये रिते गणधरणे अध्यापको में सर्व साधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करो शाम्यनि ये नाथि शिव प्राप्ति. आचार्य श्री कुंतन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है. उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेन आचार्य ने तात्पर्य उक्ति टीका लिखी है. इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं. उसमें से अभी हम नवी पुस्तक पर आ गए और पृष्ठ संख्या है 25. एक पैराग्राफ हमने पढ़ा था उसके बाद की बात है. ये जो श्रामण्यार्थी है ने जो दीक्षा मुनि पना जिसको प्रकट करना है उस जीव की बात हो रही थी. पहले बंधु वर्ग से विदा मांगता है, सबको बता के जाएगा, यानी वो तो पद्धति है. ऐसा चाहिए करना ही चाहिए बात नहीं है, कोई जीव ऐसे भी चले जाएंगे, परंतु सामान्य से ये बात चल रही है. और बाद में पंचाचार का अंगीकार करता है. अच्छा बहन कौन से पांच आचार थे? बहुत अच्छा. ये आचार्य ने कहे तो समय दर्शन जो है उसकी बात है. वो कैसे तो आठ गुण युक्त होते, आठ दोष से रहित होते वगैरह वगैरह बातें उसमें बताइए. ज्ञानाचार में भी उसके ज्ञान में जो दोष लगते उसको टाल कर की बात आती है. जैसे अनिन्नव बताया, निन्नव ये दोष है, अनिन्नव उसका गुण होगा. सम्यक ज्ञान की जो विशिष्ट आठ बातें होती है वो वहां बताई गई. ऐसे ही चारित्र और तप की बात बताई है, तो कितने प्रकार के चारित्र है, कितने प्रकार के तप है, उसको वो पंचाचार, चारित्राचार, तपाचार ऐसे नाम वहां बताए थे. अब यहां हम पढ़े रहे 25 पेज पर दूसरा पैराग्राफ. वह माता पिता की बात कही, अब कहते हैं अहो इस पुरुष के शरीर की रमणी स्त्री. अभी स्त्री से पत्नी से बात करें. देखो शरीर की रमणी हमारे आत्मा को रमण करा सकती हो ऐसी तुम्हारी ताकत है नहीं. इस पुरुष के शरीर की रमणी स्त्री के आत्मा हर बार वो आत्मा को संबोधन कर रहे हैं, रमणी के आत्मा, उसको आत्मा को कहते हैं ना, तू इस पुरुष के आत्मा को रमण नहीं कराता, भगवान आत्मा को तुम रमण कराते नहीं, शरीर जड़ मिट्टी के साथ रमण करते थे, हमारे आत्मा के साथ तुम्हारा रमण नहीं था, इस पुरुष के आत्मा को रमण नहीं कराता, ऐसा तू निश्चय से जान, निश्चय से तुम नक्की करो, ऐसा कहते हैं। उसमें ऐसा आया था ना, अणा गय में है ना, ग है ना, वो ये छपा नहीं है, अणा गय में वो ग ही चाहिए, हाँ अणा गय में वो छपा नहीं मेरे में बराबर, 22 पेज पर है देखो, अणा गय में वो अणा गय में वो थितिंची श्रद्धा खम में, श्रद्धा करो मावता, प्राप्त नहीं हुई ऐसी कोई चीज रही नहीं, चारित्र प्राप्त नहीं हुआ, रह गया है उससे हम अंगीकार करेंगे, बाकी लौकिक चीजों की बात नहीं यहाँ पर। फिर कोई ऐसा कहते हैं, बहुत आज्ञा मांगते हैं, फिर आज्ञा देते हैं, तो माता पिता कहते बेटा चले जाओ, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो हमें भी वह रास्ता प्राप्त हो, माता पिता कहते हैं जाओ भाई, आत्मा का कल्याण करने को जाते हो, हमारी आज्ञा है, वह तो ठीक, लेकिन जिस मार्ग पर चलकर आनंद में जाते हो वह मार्ग हमें भी प्राप्त हो, ऐसी हमारी भावना है। समझ में आया? आहा हा, यहाँ कहते हैं कि हे शरीर को रमणता कराने वाली स्त्री, इस आत्मा को तुम रमण नहीं करा सकते, रमण नहीं कराता, ऐसा तू निश्चय से जान, इसलिए तू इस आत्मा को छोड़। हे शरीर में रहने वाला आत्मा, हमारे प्रति का प्रेम छोड़ दे। आत्मा को छोड़े नहीं क्या, ये जो राग है वो राग को छोड़ दो। जो दीक्षा लेने वाले जीव, जो जीव है वो अपनी स्त्री से संबोधन देता है, क्या कहे, तू इस यानी मेरे प्रति जो तेरा राग है, मेरे प्रति यानी आत्मा के प्रति नहीं, हमारे प्रति का प्रेम छोड़ दे, क्योंकि आत्मा का कोई संबंध नहीं है किसी के साथ। जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, यानी वो सम्य दृष्टि है, ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, आत्मा का अनुभव है, हमारे आत्मा में हमारा आनंद चैतन्य का भाव प्रकट हुआ है, हमारा अनुभव आत्मा कैसा है यह अनुभव हमको हो गया है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है ऐसा यह आत्मा, देखो ऐसा यह आत्मा आज अपनी स्वानुभूति रूपी अनादि रमणी के पास जा रहा है। यहाँ तो राग की बात नहीं ली है भाई, बाद में व्यवहार की बात कहेंगे, लेकिन हमें जाना तो है हमारे स्वरूप में। बीच में पांच आचार आदि का राग आएगा, अभी हमने देखा ना पंचाचार कौन से, वो भी राग रूप लिए, कौन से, शुभ भाव रूप लिए, लेकिन हमें जाना है अंदर में। समझ में आया? हमारा भगवान आत्मा अनादि स्वानुभूति रूपी अनादि रमणी, स्व अनुभव तो हमारे स्वभाव में अनादि का पड़ा है, क्या कहा, ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा कहते ना, वो तो त्रिकाली की बात है ना, क्या कहा, स्व अनुभव तो हमारे स्वभाव में अनादि का पड़ा है, ये पर्याय में अनुभव होगा वो बात बात की, ऐसे स्व की ओर हम जाते हैं। समझ में आया? आज आज कहते हैं, बाद में जाएंगे ऐसा नहीं, जाएंगे ऐसा नहीं, देखो आज वैराग्य हुआ है, आज आज्ञा दो तो फिर दो पांच दिन के बाद हम वैराग्य अंगीकार करेंगे, ऐसा नहीं कहा, यानी कहा ना, आप अपनी आज अपनी स्वानुभूति रूपी अनादि रमणी के पास जा रहा है, आज की बात है ना, ये भविष्य का वादा नहीं किया। माता अथवा स्त्री इस शरीर को रमण कराने वाली प्रेम छोड़ दे। हमारे आनंद स्वरूपी अनुभूति हमारी रमणी है, उसके पास हम जा रहे हैं। ओहो हो, चरणानियोग की रीत में भी कितनी अनुभव सहित की वैराग्य दशा, राग के अभाव की रमणता करने की कितनी भावना है। देखो वह तो कहा ना कि हम प्रणेता आ उभा खड़ा रहा, ये हम खड़े हैं ऐसा बताया था ना, प्रणेता ने बताने वाले मुनिपने की दशा हमारे पास है, और उसके साथ व्यवहार विकल्प की कितनी मर्यादा आती है वह हमारे अनुभव में है, हमारे ज्ञान में है, वह तुम्हें कहेंगे। निश्चय के साथ व्यवहार की बात, विकल्प की बात भी उठा रहे। आज अपनी स्वानुभूति रूपी अनादि रमणी के पास जा रहा है। ओहो, इस पुरुष के शरीर के पुत्र के आत्मा लो, हो उसकी बात है ना, न हो उसकी बात कहाँ है, सभी को थोड़ा ही होता है। नकली स्त्री बनाए कि स्त्री नहीं है तो उसकी आज्ञा ले। श्रोता कहते कोई ब्रह्मचारी हो, हाँ ब्रह्मचारी हो उसमें क्या है, माता पिता हो तो उसके पास जाए, भाई हो तो भाई के पास जाए, मुमुक्षु कहते न हो तो बनाए, जगदीश कहते न हो तो बनाए कहाँ से आया। वह तो होता है, जिसे हो उसकी बात है। सबको ऐसा होता नहीं, किसी ने स्त्री के साथ शादी की हो, पुत्र हुआ हो, तो भी आज्ञा ले कि हे इस पुरुष के शरीर के पुत्र के आत्मा, तो इस पुरुष के आत्मा का अन्य ने उत्पन्न किया गया पुत्र नहीं, जन्य चाहिए अन्य नहीं, निकालो, अन्य का कोई अर्थ ही नहीं ना, जन्य होना चाहिए, जन्य जन्य ने उससे उत्पन्न हुआ है। देखो पेज नंबर है 13, बीच में दो लाइन के बीच में जो टीका है ना, आत्मानो तू जन्य नति एम निश्चेति तू जान, लिखा है ना, तीसरी लाइन में भी लिखा है, देखो आत्मानो तू जन्य नति, तो इस पुरुष के आत्मा का जन्य नहीं है, जन्य ने उत्पन्न किया गया, माँ के लिए जनेता कहा ना, जनक और जननी, जननी जनक ऐसा कहते, और यह जन्य हुआ, मैंने पुत्र के लिए जन्य कहा, मैंने मेरे आत्मा से तो उत्पन्न नहीं हुआ है, तुम हमारे पुत्र नहीं, आत्मा का पुत्र तुम नहीं, ऐसा तू निश्चय से जान, निश्चय से जान ऐसा कहते हैं, इसलिए तू इस आत्मा को छोड़, जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है ऐसा यह आत्मा आज आत्मा रूपी अपने अनादि जन्य के पास जा रहा है। हमारा आत्मा अंदर आनंद की प्रजा उत्पन्न करे, देखो हम पुत्र को उत्पन्न करने वाले नहीं है, तो अपनी जो स्वभाव रूप पर्याय है उसके हम उत्पन्न करने वाले, यही कहते, देखो हमारा आत्मा अंदर आनंद की प्रजा उत्पन्न करे ऐसा हमारा आत्मा है, उसके पास जा रहे हैं, आह हमारी निर्मल पर्याय के पास जा रहे हैं, समझ में आया। इस प्रकार बड़ों से स्त्री से और पुत्र से अपने को छुड़ाता है। अब उसकी विधि कहेंगे, क्यों ऐसा कहा उसकी थोड़ी बात कोष्ठक में है, वह कर लेंगे। अब नया प्रवचन 28 पेज पर है, गाथा भी 202 और प्रवचन भी 202। उन्नीस सौ 1969 में प्रवचन हुए, अरे बाप। प्रवचन सार चरणानुयोग सूचक चूली का अधिकार, 202 गाथा चलती है। देखो क्या कहते हैं, अपना आत्मा जिसको अंतर ज्ञान ज्योति का प्रकट होना हुआ है, यानी जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है, स्व संवेदन प्रकट हुआ है, अपना स्वभाव शुद्ध चैतन्य घन उसका अनुभव हुआ। ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, इसका अर्थ क्या है? अपना जो स्वभाव शुद्ध चैतन्य घन है उसका अनुभव हुआ, ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। अनादि से अस्सी रूप से तो है ही, परंतु अंतर्मुख दृष्टि से अंतर में आनंदादि की जो शक्ति थी उसका अनंत गुण का अनुभव होने से क्या कहते हैं? ये तो शक्तियां तो अनादि से है ही, अस्थिर रूप है, परंतु अंतर्मुख दृष्टि करके ये आनंद आदि, आदि यानी अन्य भी, अन्य अनंत गुण जो है, जो शक्ति है उसका अनुभव यानी उसके प्रकट, उसका अंश प्रकट हो जाता है, व्यक्त हो जाता है। वर्तमान अवस्था में अनंत गुण का आनंद आदि का अंश प्रकट हुआ है, ऐसा भी आता है ना शास्त्र, ज्ञान का आनंद, श्रद्धा का आनंद, वीर का आनंद, तो अनंत गुण का आनंद आदि अंश होता है, उसको ज्ञान ज्योति प्रकट हुई ऐसा कहने में वो म निकाल दो, कहने में आता है, वो मुनिपना लेना चाहता है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अपना स्वरूप का आनंद अनुभव होने के बाद मुनिपना लेना चाहते, यानी वो सम्यक दृष्टि है, अब मुनि बनना चाहते, तो कुटुंब से विदा मांगते हैं। वह बात कल आ गई, समझ में आया? वह व्यवहार कहने में आया, वह कहते हैं, देखो कोष्टक में है ना, यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जो जीव मुनि होना चाहता है, भगवान आत्मा चारित्रपना, आनंदपना, स्व संवेदन की उग्र दशा प्रकट करना, परिणमन करना चाहते हैं, क्या कहते हैं? स्व संवेदन तो है, और यहाँ क्या शब्द आया? स्व संवेदन की उग्र दशा, यानी अधिक लीनता, तो जो उसकी जो आनंद है वो प्रचुर आनंद अनुभव में आ जाएगा, तो ऐसा परिणमन करना चाहते हैं। वह कुटुंब से सर्व प्रकार से विरक्त ही होता है विरक्त, फिर भी ये तो पद्धति है, व्यवहार है बता के फिर विदा लेने की, विरक्त ही होता है यानी विरक्त ही है, यानी राग से रहित है, विरक्त यानी उनके प्रति का राग नहीं रहा, कुटुंब के साथ कोई संबंध नहीं है, राग के साथ संबंध नहीं, सम्यक दर्शन हुआ, अपना आत्मा आनंद धाम ऐसा अनुभव में आया, तो विकल्प जो है उसके साथ संबंध है नहीं, तो कुटुंब के साथ तो संबंध है ही नहीं, समझ में आया? यानी उनके प्रति जो राग था उसके साथ भी संबंध नहीं रहा, तो कुटुंब के प्रति तो संबंध होगा ही नहीं, इसलिए कुटुंब की सम्मति से ही मुनि होने का नियम नहीं है। कुटुंब पिता दे और इजाजत दे तो ही मुनि होना, ऐसा कोई नियम नहीं, ऐसा कोई निश्चय नहीं है। इस प्रकार कुटुंब के भरोसे पर तो यदि कुटुंब किसी प्रकार से सम्मति ही नहीं दे तो मुनि ही नहीं हुआ जा सकेगा, जा और सकेगा में थोड़ा अंतर चाहिए। क्या कहना चाहता है? अगर ऐसा नियम हो और किसी कुटुंब ने इजाजत नहीं दी तो क्या वो दीक्षा नहीं लेगा? जरूर लेगा, अपने आनंद की सावधानी में जागृत तो हुआ, विशेष जागृत करके जहां टटोल करके आत्मा की शांति की दशा प्रकट करनी है तो विदा न दे और इजाजत न दे तो रुक जाए, समझ में आया? अपना आनंद, अपना स्वरूप आनंद की धारा प्रकट करने को कुटुंब की आज्ञा का कोई प्रतिबंध नहीं, यानी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है वो कि आज्ञा होनी होगी तो ही वो दे ले सकता, ऐसा नहीं है, चले जाते हैं, समझ में आया? मृत्यु के समय पूछता है कि अब मैं जाऊं? क्यों, समझ में? मरण सामने है तो कुटुंब से इजाजत लेके जाता है क्या? अभी मैं जा रही, बाय बाय टाटा, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? और कोई कौन कहेगा जा करके? अच्छा बताए, कि मृत्यु के समय पूछता है कि अब मैं जाऊं, मेरी आयुष्य पूरी है तो मैं जाऊं, इजाजत दो, ऐसा पूछता है? वैसे यहाँ इजाजत ही है, पर के प्रति मोह मर गया तो इजाजत ही है। क्या कहते हैं? अपने मोह के कारण रुका था और ये मोह मर गया तो इजाजत है ही, ऐसा कहना है। भगवान आत्मा मुनि होने से पहले जहां आत्मा की दशा का अनुभव हुआ है, यानी संवेदन हुआ है, तो राग और व्यवहार के विकल्प के साथ भी संबंध है नहीं। फिर से क्या कहते हैं? मुनि कौन होने जा रहा है? समय दृष्टि है, तो उसने तो आत्मा का अनुभव कर लिया है। यानी जो राग और विकल्प के व्यवहार के विकल्प के साथ कोई संबंध उसको नहीं रहा, क्योंकि उससे जुदाई उसके अनुभव में आ गई है, भेद विज्ञान कर लिया है उसने, राग से तो भेद विज्ञान कर लिया, तो उसके साथ भी संबंध नहीं है, तो कुटुंब के साथ तो संबंध बहुत दूर रहा। यानी कुटुंब के प्रति राग पहले था, वो भी नहीं रहा, अभी राग का संबंध छोड़ दिया है, इसलिए कहते कुटुंब के साथ तो संबंध बहुत दूर है। आगे आएगा, मेरा स्वरूप तो आनंद शुद्ध चैतन्य है, ध्रुव वस्तु भगवान आत्मा मैं हूं, वो हूं वाला दीर्घ करना। क्या कहते हैं? मेरा स्वरूप तो आनंद ध्रुव चैतन्य है, ध्रुव वस्तु भगवान आत्मा मैं हूं, ऐसा वेदन में, अनुभव में, आनंद की दशा में स्व संवेदन अपने से हुआ। अपने से क्यों बताया? किसी शुभ राग के कारण नहीं हुआ है, तो राग से संबंध नहीं रहता तो कुटुंब से कैसे संबंध हो? इस प्रकार कुटुंब को सम्मत करके ही मुनित्व को धारण करने का नियम न होने पर, ऐसा नियम है नहीं, परंतु कुछ जीवों के मुनि होने से कोई जीवों को ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, पूर्व वैराग्य के कारण कुटुंब को समझाने की भावना से पूर्वोक्त प्रकार के वचन निकलते हैं। वचन भी निकलते हैं, वचन करते नहीं, यानी उसका तो करता ही नहीं है, सहज ऐसा किसी के होते हैं, ऐसा वैराग्य का वचन निकलता है, ऐसा कहते हैं। माता पिता, शरीर की रमणारी स्त्री, पुत्र होते तो ऐसे वचन निकलते हैं, माता हमें आज्ञा दो, हमारा स्वरूप आराधन करने में हम तत्पर होते हैं, पूर्वोक्त प्रकार के वचन निकलते हैं। ऐसे वैराग्य के वचन सुनकर कुटुंब में यदि कोई, यदि और कोई में स्पेस चाहिए, अल्प संसारी जीव हो तो वह भी वैराग्य को प्राप्त होता है। ये निमित्त रूप से बताया है कि ऐसा जो प्रसंग, वैराग्य का प्रसंग देखकर अन्य भी जीवों को ऐसी भावना हो जाती है कि मैं भी मुनिपना अंगीकार करूं, ऐसे वैराग्य के वचन से कुटुंब में से कोई निकले, इस कारण से ऐसे वचन निकलते हैं, वैराग्य के वचन निकलते हैं, वचन के कर्ता है नहीं। क्या कहा? ये सहज रूप से ऐसे वैराग्य के वचन निकलते हैं, उसके कर्ता नहीं है, और पर का प्रतिबंध का भाव भी उसे है नहीं, यानी कोई उसको रोक लगावे, परमिशन नहीं देवे तो रुक जाए, ऐसा भी नहीं है। देखो शैली कितनी ऊंची है, समझ में आया? विवेकी धर्मात्मा मुनि होना चाहते हैं, विवेकी यानी सम्य दृष्टि, वेद ज्ञानी है, धर्मात्मा भी कहा ना, विवेकी धर्मात्मा मुनि होना चाहते हैं तो इसे वैराग्य के वचन निकले, कोई समझ जाए तो, आत्मा के ज्ञान सहित, अनुभव सहित कोई मुनि होना चाहते हो तो हो जाए, नहीं तो उसका कोई प्रतिबंध नहीं है। हम परदेशी पंखी साधु आ रे देश के नाही रे, हम परदेशी पंखी साधु आ रे देश के नाही रे, स्वरूप साधन पूर्ण करी जासु स्वदेश मोझार रे। हम परदेशी पंखी साधु वैराग्य सहित ऐसा कहते हैं, कोई निकले तो निकलो, नहीं तो अपना तो स्वरूप साधन होता है। यह निश्चय सहित व्यवहार कैसा होता है उसकी बात है। जो स्वयं उनकी ऐसी वैराग्य दशा है तो उनके ऐसे वचन सुनकर निमित्त रूप से किसी को ऐसा हो जाता है कि वो भी समय दृष्टि है तो उसके भी मुनि होने के भी भाव हो सकते हैं। मुमुक्ष ने कुछ पूछा बीच में, पूज्य गुरुदेव जी आदरणीय की बात है नहीं, यानी वो जो उनके विकल्प आया है बोलने का वो करने जैसा है, आदरणीय ऐसी बात नहीं है। आता है उसको व्यवहार में से अंगीकार करता हूँ ऐसा कहने में आता है, समझ में। जो उनके जो विकल्प आया है तो व्यवहार में से वो क्या कहेंगे, मैं उसको अंगीकार करता हूँ। चरणायोग की पद्धति ऐसी है, ऐसा बीच में आता है। देखो अब निम्न प्रकार से पंचाचार को अंगीकार करता है, जो पांच प्रकार के आचार बताए ना, ज्ञानाचार दर्शनाचार वगैरह, तो उसको अंगीकार करता है। लो यह पंचाचार व्यवहार की बात है, ये व्यवहार पंचाचार है। निश्चय से तो सारे ये आचार कोई भी नाम देते हो तो अपने स्वरूप में दीनता ही वो सचमुच आचार है, परंतु वहाँ व्यवहार से जो उनके शुभ राग है उसको भी आचार कहेंगे और उनको मैं अंगीकार करता हूँ ऐसा वहाँ व्यवहार नहीं से वचन भी वहाँ होगा। जिस प्रकार बंधुवर्ग से विदा ली, अपने को बड़ों से स्त्री और पुत्र से छुड़ाया, उसी प्रकार अहो काल आदि जो है वो आठ जो है ज्ञान के आचार बताए। यह व्यवहार आचार है, निश्चय आचार तो है ही, समझ में आया। तब ऐसा व्यवहार आचार आता है, जिसको निश्चय आचार है। निश्चय ज्ञान आचार क्या है, स्वरूप में लीनता है, स्वरूप का अनुभव है, तो उसके ऐसे व्यवहार आचार उसके होते हैं आते हैं। परंतु व्यवहार आचार से कथन किया है, जैसे आचार्य देव की टीका में है, भाई समझ में आया। निश्चय समय ज्ञान का आचार तो अपने आनंद में एकाकार ज्ञान में लीन हो जाना, वह निश्चय ज्ञानाचार्य। क्या कहा, ज्ञानाचार किसको कहेंगे, जो समय ज्ञान है वो अपने आनंद में एकाकार है, अपने ज्ञान में लीन हो जाना वह निश्चय ज्ञानाचार्य, वही वास्तव में ज्ञानाचार्य। परंतु साथ में ऐसा विकल्प व्यवहार का आता है, कैसा विकल्प आता है, अहो काल, काले काले स्वाध्याय करना, काले ने योग्य काल में स्वाध्याय करना, योग्य काल में स्वाध्याय करना, अकाल में स्वाध्याय करना नहीं, ऐसा विकल्प आता है। देखो अकाल में यानी उनके जो सामयिक के वगैरह समय होते हैं, संधि काल, हाँ उस समय में सामयिक और ध्यान का उनका काल होता है, उसको छोड़कर वो स्वाध्याय उस काल में नहीं होते, और स्वाध्याय में भी सूत्र का जो वाचन होता है वो उस काल में नहीं करते। मूल सूत्र जो चले आए हैं, सूत्र रूप जो ग्रंथों की रचना है, वो सूत्रों का वाचन उस काल में नहीं होता, उसका स्वाध्याय नहीं करते। काल आपकी कौन सी दशा चल रही है, ख्याल में ना ही अपने सामायिक व्रत है ना ही सामायिक तप है, अभी पांचों गुण प्रतिमा जिसने लिए, सामायिक प्रतिमा भी है ना, तो उसके तो वो बुद्धिपूर्वक वो बैठकर सामायिक करने की, हाँ करेगा ही नहीं, वो सामायिक के लिए वो बैठेगा, प्रयत्न भी करेगा स्वरूप में लीन होने का, यानी स्वरूप में चरना ये मुख्य बात है, और सामायिक उसके सामने कैसी बात है, वो हीन दशा है ना उनकी। अभी स्वाध्याय नहीं करते हुए क्या करेंगे, भोजन करेंगे, गप्पे लगाएंगे, टीवी के सामने बैठेंगे, कुछ खेल खेलेंगे, घूमने चले जाएंगे, सिनेमा देखेंगे। नहीं नहीं, हमको अकाल में स्वाध्याय नहीं करना, तो अकाल में ये सब करना ऐसा है? यानी बहुत लोग पूछते हैं कि हम करें कि नहीं करें स्वाध्याय। आपने पूछा ना हम क्या करें, ऐसा आता है, ऐसा पूछते भी है, परंतु हम विवेक करेंगे ना उसका, कि हमारी कैसी दशा है, और उस काल में हम ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इससे सामयिक कितनी बहुत ही अच्छी बात है। अगर सामयिक नहीं है तो ये करना अच्छा है, ख्याल में आती है?
देखो बात ऐसे कि लोगों के फोन आते हैं हमको, वो पूछते हैं शाम को हम आप स्वाध्याय करें कि नहीं करें हमको, है ना? अभी हम, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी यही टाइमिंग है, अपने को चाबी मारने के लिए पूछते। लेकिन ये स्वाध्याय किसको कहा? सामयिक, सामयिक का अर्थ क्या होता है? सम आय यानी प्राप्ति, यानी समता की प्राप्ति। वो तो अपने स्वरूप में एकाग्र होने का प्रयत्न करते हैं, पंचम गुणस्थान वर्ती, सातवें छठे गुणस्थान वर्तियों को तो असामय होता ही है, मान लो छठे सातवें, तो उनको तो आपने बताया जैसा कि सामय करना योग्य है। उनके लिए अन्य बातें, यानी अपन जो स्वाध्याय करते हैं वो करने योग्य नहीं है। ये व्यवहार स्वाध्याय, स्व का अध्याय करेंगे तो बात ही अलग है। यहाँ तक के पूछते कि धबला का अभ्यास करें क्या नहीं। अभी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, चलो आगे।
नहीं नहीं, जब कहते ना सिद्धांत ग्रंथों का अभ्यास नहीं करना चाहिए, सूत्र ग्रंथों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हाँ, शाम को या कोई भी संध्या काल है, संधि काल जिसको कहेंगे, हाँ सुबह काल, हाँ तीन 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 काल में, सुबह दोपहर और शाम को। हाँ, अभी पंचाचार अंगीकार करते कौन है? सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। अभी तक अंगीकार नहीं किए थे ना, अभी कर रहे हैं। मुनि योग्य की बात चल रही है। अभी मिथ्या दृष्टि पूछता है कि मैं शाम को स्वाध्याय करूं कि नहीं करूं, क्या भी है ना बात? अरे उसको तो 24 घंटे स्वाध्याय करे तो भी ठीक है, हम कहेंगे हाँ कर तो, उसके लिए कोई आकार नहीं। उसको तो चाहिए ना, जितना चाहिए होती है सही रूप से समझ कर फिर प्रकट करे अपना स्वरूप।
ये बात हमको 72 में या उसके पहले 1972 में हम जब बाहुबली गए थे कुंभोज, तब वहाँ जो मुनिराष्ट्र है समन्त भद्र महाराज, उन्होंने समझा तू डिस्पेंसरी में स्वाध्याय कर, तेरे को टाइम मिलता है। अरे शास्त्र उधर ले जाने का, वहां तो सारे रोगी आते हैं, चिंता मत कर, जो कोई तुझे पाप लगेगा वो मैं ले लूंगा। देखो मुनिराज को
तो की प्रेम, हाँ। कभी कार में जाते है, कहीं ट्रैवल करते, कभी भी नहीं, वो शुद्धता की कैसे क्या होगा? जो पाप लगेगा मुझे लगने दो, यानी कितनी स्वाध्याय की उन्होंने मुख्यता और प्रेरणा दी थी। और उनके हाथ के नीचे बहुत सारे बड़े बड़े जो पंडित हुए ना, हीरालाल उपाध्याय वगैरह, वो सारे इनके शिष्य थे।
यानी वो भी जानते थे कि ये मिथ्या दृष्टि जो है 24 घंटा स्वाध्याय करे तो आंधा नहीं। तो जब हम कहते हैं कि तुम रसोई बनाते हो तो सामने एक चिट्ठी रखो, 47 शक्ति का नाम लिख लो, याद हो जाएगा। सर्व रसोई घर में जहाँ पाप का काम करते खाना खाने का आकर। देखो ऐसी बात है, मैं तो कहूंगा हम तत्व के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे? मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरे जमाई ऐसा है, यानी कौटुंबिक बातें दिमाग में आए मेरे रहती ही नहीं। वो अच्छा के स्वाध्याय करना अच्छा, ये नक्की करें हम, ये हमको स्वयं को नक्की करना है। कोई कहता है इसलिए करना है, फिर अपना मन भी बदल जाता है, सामने वाला कन्फर्म बहुत पावर बोलेगा उसके अंदर।
हम तो बताते अपने से निर्णय करो, हम कुछ भी कहे उससे मत जाओ, नहीं तो कहेंगे इन्होंने बताया इसलिए हम कर रहे।
परसों किसका फोन आया था?
हाँ, कहीं किसी का आया था, कोई पंडित ही किसी।
क्या बोलो, आप बोलो क्या होता है? बोला हम कुछ नहीं बोलते, आपको जो अच्छा लगे कर ले। उज्ज्वला ने कहा तक बताया, तुम कहोगे कल उठ के, तुम कल उठ के बताएंगे कि उज्ज्वला ने ऐसा बताया, वो मेरा मत सोचना, तुमको जो नक्की करना है वो करो।
बोले भगवान की वाणी कैसी है जब इस दादा ने पढ़ने का,
वो संधि काल में इसीलिए बताते। ठीक है, चलो अहो काले ने काले स्वाध्याय करना, काले स्वाध्याय करना, अकाल में स्वाध्याय करना नहीं, ऐसा विकल्प आता है, समझ में आया? काल विनय, विनय करना, देव का, गुरु का, शास्त्र का विनय करना, ऐसा विकल्प आता है, उसे ज्ञानाचार व्यवहार कहने में आता है। ये सारे व्यवहार की बात है ना, लौकिक उसके साथ है बंध का कारण, परंतु चरणानियोग की पद्धति में ऐसा कहेंगे, हे आचार्य मैं जानता हूँ कि तुम मेरे स्वरूप शुद्ध स्वरूप से भिन्न हो। हे आचार्य ने किसको संबोधन कर रहे हैं? शुभ भाव को। ये जो विकल्प आते हैं ना, कैसे विनय, ज्ञान का विनय करने का जो विकल्प है, काल में स्वाध्याय करने का विकल्प है, ये क्या है? शुभ भाव रूप है, व्यवहार रूप है ना, तो उसको संबोधन करके बता रहे हैं। क्या कहते हैं? हे आचार्य मैं जानता हूँ कि तुम मेरे शुद्ध स्वरूप से भिन्न हो, यानी ये राग रूप है ना, ये सारे भाव, ये शुभ राग रूप भाव है, ज्ञान के संबंध में, स्वाध्याय के संबंध में, शास्त्र के संबंध में, तो कहते कि तुम मेरे शुद्ध स्वभाव से जुदे हो, हमारा शुद्ध स्वरूप तुम नहीं वह कहेंगे, परंतु तुम्हारे प्रसाद से जब तक मैं पूर्णता प्राप्त न करूं तब तक तेरा निमित्तपना मेरे ज्ञानाचार में होता है। क्या कहा? ये ऐसे जो शुभ भाव है, ज्ञान की विनय कहो, ग्रंथों की विनय कहो, एक ही बात है, हम तो कहेंगे कि ऐसे विकल्प आते हैं, और उसमें क्या बताया उन्होंने कि जब तक पूर्ण वितरागता नहीं होती है तुम्हारे प्रसाद से, वो कोई प्रसाद बात नहीं रहा, जो हमको प्रसाद खाना उसकी बात नहीं है, तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारे निमित्त से, जब तक मैं पूर्णता प्राप्त न करूं तब तक तेरा निमित्तपना मेरे ज्ञानाचार में होता है, यानी सम्यक ज्ञान है तो उनके सहज रूप से ऐसे विकल्प आते हैं, यानी विकल्प की भूमिका में आएंगे, जब निर्विकल्प पूर्ण रूप से शुद्ध भाव प्रकट होगा तो कोई राग ही नहीं रहेगा, तो तब तक निमित्त रूप से है।
यानी हम देव छात्र गुरु की बात कर रहे हैं, वे हमें निमित्त है, वो व्यवहार ज्ञानाचार में आते हैं, उनका विनय करना,
यहाँ आचार को ही लिया, विनय करने का जो विकल्प है
वही तो। हाँ। किसके बारे में? देव गुरु शास्त्र के,
देव गुरु शास्त्र के बारे में, उनके विनय करने का भाव है, उनके स्वकाल में ठीक काल में स्वाध्याय करने का भाव है, ये आठ जो बातें बताइए, अनिन्नव का जो भाव है, ये सारे उसमें ले लेना। कल हमने आठ सुने पढ़े थे ना, ज्ञानाचार आठ प्रकार के देखे थे हमने,
आएंगे
अभी बताएंगे। देखो काल बताया, विनय बताया, उपधान, उपधान का अर्थ दो होता है, एक तो जो धारी हुई वस्तु हो उसको भूलना नहीं, उपधान शब्द का अर्थ क्या बताए? जो धारी हुई वस्तु उसको भूलना नहीं, यहाँ व्यवहार है ना, कोई शास्त्र का, तत्व का भाव धारा हो, धारा हो यानी ज्ञान में हमने उसको अच्छी तरह से जाना हो, धारण किया करते हम, उसको भूलना नहीं, वह भी एक उपधान ज्ञान का आचार व्यवहार कहने में आता है, अथवा ज्ञानाचार में वह जब तक ज्ञान की आराधना करने में वर्तता है तब कोई चीज की प्रतिज्ञा होती है, ऐसी चीज मैं तब तक नहीं खाऊं, समझ में आया? ऐसी कोई प्रतिज्ञा, उपवास, एकासन, रस का त्याग इत्यादि, ऐसा विकल्प ज्ञान आराधना में व्यवहार में ऐसा आए बिना रहता नहीं। क्या कहते हैं? ज्ञान की आराधना है ने? ज्ञान की बात चल रही है। समय ज्ञान तो आत्मा का ज्ञान तो प्रकट है, परंतु अभी ग्रंथ संबंधी कोई ज्ञान की यानी कुछ उसके अभ्यास चल रहा है तो मैं इसके इस रस का त्याग करूं, ऐसा विकल्प आता है। बहुमान, ज्ञानी का बहुमान करना, ज्ञान का बहुमान करना, ज्ञान और ज्ञानी का बहुमान, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञानी के आधार से है, तो ज्ञान का बहुमान कहो, ज्ञानी का बहुमान कहो। ज्ञानाचार के भेद है 8 प्रकार के। पहला बताया काल, फिर विनय, फिर उपधान और अभी बहुमान। देखो, ऐसा व्यवहार विकल्प अनुभव पूर्वक आता है। पहले तो कहा, समझे, सर्व प्रकार से विरक्त ही है। समय दर्शन हुआ तो विकल्प से तो विरक्त ही है, श्रद्धा और अनुभव की अपेक्षा से विरक्त ही है, परंतु चारित्र की पर्याय में मंदता के कारण जो राग आता है, क्या कहा, ये राग आ रहे हैं, राग से भी विरक्त है, फिर भी राग है पर्याय में, तो ऐसा आचार अंगीकार करता हूं, ऐसा व्यवहार नहीं से कहने में आता है। ऐसा अंगीकार करते, ऐसे वचन बोलकर वो अंगीकार करने की पद्धति है, तो ऐसा विकल्प भी आता है, इन्हें व्यवहार नहीं से ऐसा कहने में आता है। ओ निन्नव, निन्नव है ने? अपने गुरु का नाम छिपाना, वो निन्नव नाम का दोष है। यहाँ क्या कहते, जो शास्त्र से ज्ञान हुआ हो या जो विद्या गुरु से ज्ञान हुआ, उस गुरु को नहीं छिपाना, वो उसको कहेंगे अनिन्नव। हमें हमारे से समझे ऐसा कहने से निन्नव दोष आता है। क्या कहा, ये हमको किसी ने नहीं सिखाया, हम ही हमसे सीखे। अरे हम ही हमसे सीखे वो तो द्रव्यानियों का नियम है, परंतु अपने गुरु से जो हम सीखे निमित्त रूप से है, जिस शास्त्र से हम सीखे है, तो कैसे उसको छिपाना नहीं। जैसे कर्णान योग हम कहाँ से सीखे, पंडित टोडरमल जी से सीखे, उनके इतने सारे ग्रंथ है हमारे पास, जीव कांड है, कर्म कांड है, लब्धि सार है, और भी कितने हैं, तो उनसे पढ़ पढ़कर हमको उस संबंधी ज्ञान हुआ, तो हम कहेंगे ना वो हमारे गुरु है कर्णान योग के। और द्रव्यान योग के सिद्धांत हमने कांजी स्वामी से सीखे, वे हमारे गुरु है प्रत्यक्ष, जिसको कहेंगे है ना। टोडरमल तो हमको सामने प्रत्यक्ष तो थे नहीं, परंतु प्रत्यक्षवत उनका उपकार हुआ है, इतना खोल खोल कर उन्होंने ग्रंथों में सरल करके समझाया।
देखो मैं बताता हूँ, एक गांव गए थे, नाम भी बताऊंगा, सागर गए थे। सागर में हमको तारण समाज ने बुलाया था, इतनी भीड़ होती थी कि वो पूरा उनका बहुत बड़ा क्या बोलते चैत्यालय होता है, वो भी पूरा होता था,
यानी वो सागर के जहाँ जहाँ स्वाध्याय चलते थे सब जगह बंद करके एक जगह सब इकट्ठा होते थे, यानी तो अपने भी सारा समाज वहाँ आता था।
तो मुझे ये कहना है कि वो देखकर वहाँ के अपने जो मुमुक्षु है वो बहुत प्रभावित हुए, अरे इतनी भीड़ होती है, चलो चलो हमको उनके घर में ले गए, साहब आपको फला फला दिन में आने का है, आप आएंगे ना, जरूर आएंगे, उसमें क्या है। तो उन्होंने कहा लेकिन एक कंडीशन है। मैंने कहा यार जो जाने वाला होता है वो कंडीशन डालता है, तो बुला, बोलो बोलो क्या है, आप कुछ भी कहो लेकिन कांजी स्वामी का नाम मत लेना।
मुमुक्षु ने वो दिगंबरी थे, तारण समाज ने वो मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति को नहीं मानते, ऐसा अलग उनका एक पंथ है।
वो तो मुमुक्षु थे भाई जिन्होंने ये कहा। स्वामी अपन उनके घर में गए तो डॉक्टर हुकुमचंद भारी गए,
घर में नहीं, उनके वो दूसरे मंदिर में बुलाए थे।
वो आदमी की मैं बात कर रहा हूँ,
परंतु वो आदमी उस मंदिर में बुलाना चाहता था।
ठीक है, वो अपना समाज मतलब वहाँ जैनियों का अधिक होगा, हमने कहा हम नहीं आते, हमको ऐसा निर्णव दोष नहीं चाहिए, गुरु का नाम हम छुपावे कभी नहीं होगा। हाँ बार बार हम उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन
जानबूझकर उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, परंतु हम उनका नाम लेना ही नहीं ऐसी कंडीशन डाल रहे थे वो, उन्होंने बोला हमको नहीं आना है।
न हम गए न उन्होंने बुलाया, ये निर्णव दोष है ना, जब से मेरे ख्याल में
यहाँ लिखा ना, जो शास्त्र से ज्ञान हुआ हो या जो विद्या गुरु से ज्ञान हुआ, उस गुरु को नहीं छिपाना। हम ही हमारे से समझे ऐसा कहने से निर्णव दोष होता है, ज्ञान की चोरी होती है। समझ में आया?
मैं बोलू क्या?
समझा हो समय सार से?
मैं बोलू? बोलो बोलो। कुछ साल पहले की बात है, अपने यहाँ जैसे आप लोग आते वैसे अन्य पहले वाले लोग आते थे। देवलाली में हमारा दोनों का होता था, उस समय वो एक व्यक्ति थी, वो बोलने लगी तुम मत बोलना, हम इनके यहाँ जाते हैं, हम इनके पास सीखते हैं, ऐसा बोलने लगे वो। सब लोग जानते, अभी नाम नहीं बोलूंगा आपको, आप कहाँ रहते हैं? भटूंगा में, उसी एरिया में, शायद ये जानती होगी। जाने वो निर्णव दोष था उसका, हम कुछ नहीं बोले। फिर बाद में बात करने को, बात भी करने को मना करती, जैसे आप लोग का ग्रुप है चार पांच जन, एक जन बोलेगा नहीं जान उधर उनके साथ जाके बात मत करो, बस वो सबको कहने लगी, लेकिन वही बात करने को है। गो अहेड।
हाँ देखो, हम ही हमारे से समझे ऐसा कहने से निर्णव दोष होता है, ज्ञान की चोरी होती है। समझ में आया? समझा हो समय सार से, और कहे कि मैं तो श्वेतांबर का भगवती सूत्र पढ़ता था, उसमें से मुझे ज्ञान हुआ है। समझ में आया? क्या कहना चाहते समझ में? दिगंबर शास्त्र में से उसने पढ़ा, और श्वेतांबर है अभी, उसने कुछ मैं दिगंबर को मानने का इनकार करता है, नहीं मैं तो यहाँ से ही पढ़ा हुआ ऐसा कहता है। मुमुक्षु ने कुछ कहा बीच में, पूज्य गुरुदेवी अपने शास्त्र में भी कहा नहीं है, पहले ना कहते थे। समझ में आया? यह शास्त्र पढ़ने से मुझे ज्ञान हुआ, मुझे जो चाहिए, दो बार आया, क्या कहा? यह शास्त्र पढ़ने से मुझे ज्ञान हुआ है, और इस विद्या गुरु से मुझे ज्ञान हुआ है, ऐसा यदि छिपाए तो निन्नव अर्थात ज्ञान का चोर है, तो उसके व्यवहार में ठिकाना नहीं। देखो, निश्चय से तो ज्ञान की परे अपने से होती, परंतु निमित्त रूप से कोई शास्त्र है, कोई विद्या गुरु है, गुरु कहने से मुनि की बात नहीं होता है, कोई भी विद्या गुरु भी हो सकता है, तो उसके कारण इसको वो बात समझ में आने लगी। तो कहते वो कहता कि नहीं मुझे तो, मैं तो अपने से ही जान गया, ऐसा कहने वाले भी होते हैं।
एक मिनट मैं कुछ बोलूं। देखो अपने यहाँ महाराष्ट्र में एक वाला नाम का गांव है, वाले, और जो उनके भाई डॉक्टर महावीर शाह अमेरिका में रहते हैं, उनके भाई यहाँ रहते हैं, वो हमारे साथ हमेशा आते थे जयपुर इधर उधर, तो उनके मंदिर में कोई बोलने वाला नहीं था, वो जाके बैठे स्वामी जी का नाम ले तो सब भड़क जावे। वो क्या करते थे, बाहर एक अलग से पुस्तक रखते थे, अंदर भागवत भाग एक दो तीन सिखाए उन्होंने, सब लोग अरे कितने अच्छे पुस्तक कहाँ से लगा है, अरे भाई शास्त्र में लिखा है, वो नहीं पता है कि भागवत जयपुर में छपी। ऐसे भी लोग हमने देखे।
पढ़ो क्या आगे?
चलो चलो।
अनिन्नव निन्नव नहीं, चोरी नहीं करनी, छिपाना नहीं, गुप्त रखना नहीं। समझ में आया? अर्थ, व्यंजन और तदुभय। अभी तक हमने कौन कौन से देखे? काल, विनय, उपदान, बहुमान, अनिन्नव, अब अर्थ, व्यंजन और तदुभय, आठ होते हैं ना टोटल। जो भगवान का शास्त्र है सिद्धांत गुरु का अथवा आचार्य का शास्त्र है उसका अर्थ जैसा है वैसा लगाना, या अर्थ में कोई दूसरा अर्थ नहीं निकालना, उसमें गलत अर्थ नहीं निकालना, जैसा है वैसा अर्थ लगाना, अपनी कल्पना से अर्थ लगाना नहीं। क्योंकि क्या है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे पहले आपको वसु और नारद की तो पर्वत और उसकी कथा मालूम है ना, अजय शब्द का, अजय शब्द का अर्थ, अजय का अर्थ क्या होता है, वो जो जो साली के साथ चावल होते हैं ना, तो उसको अजय कहेंगे। और उसका दूसरा अर्थ क्या, बकरा, अजय। तो उससे बलि यानी पूजा करने की जो पद्धति होती चावल से, तो अजय ने बकरे का बलि दे दो यानी उसको मारो, ऐसा उसने कथन किया। वो प्रथा तभी से पड़ी। तो कहते अर्थ अपनी कल्पना से लगाना नहीं। समझ में आया? अन्य भी जो अर्थ होते हैं ना, ऐसे अनेकांश शब्द का गलत ही अर्थ करते हैं। अभी निमित्त होता है परंतु निमित्त से कार्य होने के बाद अपनी कल्पना से उठाते हैं, जैसा शास्त्र में जिस पद्धति से उसका अर्थ करना चाहिए वैसे नहीं करते हुए अलग ही अर्थ करना, या अपने मति कल्पना से कुछ कर देना। समझ में आया? और शब्द, व्यंजन यानी शब्द, व्यंजन का दूसरा अर्थ क्या होता है, खाने की चीजों को भी व्यंजन कहते हैं। आपने क्या मिष्ठान बनाया उसको क्या व्यंजन बनाया आज सके। तो यहाँ तो व्यंजन यानी शब्द, जैसा शब्द शास्त्रों में है ऐसा ही शब्द का उच्चारण बराबर करना। देखो शब्द का भी उच्चारण सही होना चाहिए। समझ में आया? उच्चारण तो जड़ की पर्याय है परंतु समझने में उसके भाव में ऐसी बात है, समझने में हुआ, समझने में चाहिए, जे नहीं जो चाहिए, समझने में उसके भाव में ऐसी बात है, विकल्प ऐसा है, इतनी बात है। यानी जो हम उच्चार करते हैं वो सही शुद्ध उच्चार होने चाहिए। समझ में आया? और कदाचित वह शब्द न भी हो, शिवभूति मुनि शब्द ही नहीं था, व्यंजन नहीं था, अर्थ था। वो मालूम है ना शिवभूति मुनि की कथा? नहीं मालूम? उसके गुरु ने कहा मातुष मारुष, तो मातुष मारुष कहते कहते वो भूल गए क्या बताया। तो क्या तुषमास भिन्न, क्योंकि कोई महिला थी वो तो टूट रही थी वो दाल, तो उसके पोथरे अलग यानी उसका ऊपर का और वो दाल दूसरा, तो तुषमास भिन्न। किसी ने पूछा होगा ना क्या कर रही हूँ, तो तुषार माँ से भिन्न कर रही हूँ। तो उसने वही शब्द पकड़ा, अर्थ तो वो ख्याल था कि मैं जुदा हूँ, ये राग जुदा है। भेद ज्ञान के लिए ये शब्द माँ तुषा माँ रुषा नहीं, राग द्वेष रहित की बात थी, तो इन्होंने तुषा माँ से भिन्न की बात उसकी रटन लगा ली और फिर वो भेद ज्ञान करके स्वरूप में गुप्त हो गए। यहाँ क्या कहा, शब्द नहीं था, व्यंजन नहीं था, अर्थ था, आनंद स्वरूप आत्मा। जैसे छिलका भिन्न है वैसे विकल्प छिलके जैसा भिन्न है ना, राग से जुदाई का जो उन्होंने अनुभव कर लिया, मेरी चीज आनंद कंद भिन्न है बस, ऐसा अर्थ समझकर अंदर में उतर गए। सम्यक दृष्टि तो थे, मुनि तो थे, और ऐसे उतर गए तो केवल ज्ञान हो गया। ये रटते रटते नहीं हुआ, अंदर में गुप्त हो गए तो हो गया। शुरुआत में ही वो शब्द थे उनके पास, शब्द थे नहीं, वो गलत शब्द लेकर उनको पर अर्थ उसको वही पकड़ा। ऐसा नहीं कि अमुक एक शब्दों में ही हम विचार करते तो ही हो जाएगा अनुभव, ऐसी बात नहीं होती है। कोई शब्द शास्त्र पढ़ा हो तो ही केवल ज्ञान हो, ऐसा है नहीं। परंतु जहां व्यवहार से बात करते हो तो उसकी शुद्धि व्यवहार से, शब्द की शुद्धि रखनी, न हो तो भाव की शुद्धि रखनी। तदुभय तद उभय यानी दोनों ही शब्द भी और उसका अर्थ भी, तद उभय और शब्द दोनों का बराबर आचार करना वह ज्ञानाचार है। लो वह विकल्प है, परंतु अपना स्वरूप शुद्ध धातु उसका अनुभव होने पर भी
जो लिखा है और शब्द, और के पहले क्या चाहिए अर्थ?
एक्चुअली व्यंजन और शब्द चाहिए, या शब्द और व्यंजन
क्या? नहीं अर्थ नहीं लेना है अपने को,
हो परंतु यहाँ और शब्द ऐसा लिया ना,
तो और के पहले क्या होना
और
चाहिए?
और के पहले व्यंजन चाहिए, ऊपर व्यंजन की बात आई थी। एक्चुअली शब्द और व्यंजन ऐसा होना चाहिए, वो शब्द और व्यंजन दोनों को मिलकर तदुभय कहा है, वहाँ व्यंजन लिखो ना, व्यंजन और शब्द दोनों का बराबर आचार करना, यानी शब्द भी उच्चार उसका शुद्ध होना चाहिए और उसका अर्थ भी सही ग्रहण करना चाहिए। एक्चुअली शब्द के अर्थ में व्यंजन आया है ना, एक मिनट, अर्थ और व्यवहार व्यंजन चाहिए, शब्द और व्यंजन नहीं, व्यंजन के लिए शब्द आया है, अर्थ और शब्द मैंने गलत बताया। क्या कहा? अर्थ और शब्द दोनों का बराबर आचार करना वह ज्ञानाचार। और के पहले अर्थ लिखो, पढ़ू हो गया, वह ज्ञानाचार है। लो वह विकल्प है, परंतु अपना शुद्ध स्वरूप शुद्ध धातु, धातु यानी शुद्ध आत्मा, उसका अनुभव होने पर भी जब तक वितरागता न हो तब निश्चय ज्ञान की रमणता के साथ ऐसा व्यवहार का विकल्प, यानी वो बारंबार शुद्ध उपयोग तो होता ही होता है, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे पढ़ेंगे तो शुद्ध उच्चार करेंगे उसका सही अर्थ ग्रहण करेंगे, ऐसा व्यवहार का विकल्प व्यवहार आता है उसको यहाँ ज्ञान कराते हैं। तो लाया था ना, ये प्रणेता रहे, प्रणेता हम खड़े हैं, ऐसी चीज ही होती है वो हमको अनुभव में आनंद में, और विकल्प ऐसा है हमारे ख्याल में है, समझ में आया? ओहो हो, व्यवहार रह गया, व्यवहार के साथ निश्चय की संधि करते हैं, संधि है इसका ज्वाइन, उसके साथ मिलान करते हैं। बहुत अलौकिक, और ये कैसा है? निश्चय के साथ वाला व्यवहार है, और लोग तो बस कोई क्रिया में घुस जाते हैं और कहते हैं हमारा व्यवहार तो है ना, अरे उसको व्यवहार नाम भी नहीं आता। आगे लिखिए बात, अकेला व्यवहार हो तो वहाँ वह व्यवहार कहने में आता ही नहीं, उसको व्यवहार ही नहीं कहते, और अकेला निश्चय हो तो केवल ज्ञान हो जाए। अकेला निश्चय कब हो जाएगा? जब व्यवहार पूर्ण रीति से समाप्त हो जाएगा, जब केवल ज्ञान हो जाएगा, तब कोई राग बाकी नहीं है। तो कहते अकेला निश्चय हो तो केवल ज्ञान हो जाए, जब तक साधक है तो निश्चय अंदर ज्ञानाचार सम्य दर्शन सहित है, तो वहां ऐसे विकल्प का भाव आए बिना रहता नहीं, क्योंकि साधक है, पूर्ण साध्य सिद्ध पद हुआ नहीं, साधक है इतना विकल्प है, तो पूर्ण वितरागी नहीं हुआ है तो अभी राग बाकी है, तो ऐसे राग में तो शास्त्र का स्वाध्याय करना, स्वयं करना, द्वारों को कराना, शुद्ध शब्दोच्चार करना, सही अर्थक धारण करना, ये सब बातें उसमें आ जाएगी। तो कहते हैं सिद्ध पद हुआ नहीं, साधक है इतना विकल्प है, वह तो बाधक है तो विकल्प बाधक, फिर भी आता है ना? लोग क्या पूछेंगे, तो क्यों करता है बाधक है? तो कहते आता है क्योंकि उस भूमिका में तो ऐसा विकल्प वैसा राग आएगा, क्योंकि अभी पूर्ण वितराग नहीं हुआ है, और ये जो राग का स्वामी बांधकर बैठा है ना, राग का कर्ता अज्ञानी, वो पूछता फिर क्यों करते हो, है ना? आत्मा बोल नहीं सकता तो क्यों प्रवचन करते हो? शास्त्र से ही नहीं ज्ञान होता तो गुरुदेव को सुनने को दो दो तीन तीन बार क्यों जाते हो? ऐसा प्रश्न अज्ञानी को पड़ता है। देखते वह तो बाधक है तो विकल्प बाधक, परंतु यहाँ चरणानुयोग है तो ऐसा कहते हैं। देखो आगे कहेंगे, यहाँ रुकेंगे अभी हम।
श्रावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्त कर सदा देत हो।
आशा भी